ये आकाशवाणी है। अब आप सरफिरोजी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से बात की और ईरान और इसराइल के बीच हाल ही में हुए तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने तत्काल तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति के जरिए क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली का आह्वान किया। राष्ट्रपति पेजेशकियन ने प्रधानमंत्री मोदी को क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर विस्तार से जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत शांति और मानवता के साथ है। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय की सुरक्षित स्वदेश वापसी में निरंतर समर्थन के लिए राष्ट्रपति पेजेशकियन को धन्यवाद दिया। ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर अमरीकी सैन्य हमलों की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को क्रूर आक्रामक कार्रवाई बताया और इसके परिणामों के लिए पूरी तरह से अमरीका को जिम्मेदार ठहराया।
ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराक्ची ने देश के तीन परमाणु संयंत्रों पर अमरीकी सैन्य हमलों की कड़ी निंदा की है। श्री अराक्ची ने चेतावनी दी कि इन हमलों के दुर्गामी परिणाम होंगे। अमरीकी हमले के कुछ ही घंटों बाद जारी बयान में ईरान ने अमरीका पर इसराइल के साथ तालमेल का आरोप लगाया। ईरान ने दावा किया कि अमरीका ने उसके उन शांतिपूर्ण परमाणु ठिकानों पर हमला किया जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमरीकी सेना के हमलों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दुनिया भर के नेता संयम बरतने और कूटनीतिक वार्ता की पैरवी कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अमरीकी कार्रवाई का समर्थन किया है और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी जोर दिया है। एक्स पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अमरीकी हवाई हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए फ्रांस ने कहा कि वह न तो हमलों में शामिल था न ही हमलों की योजना में। उन्होंने इस संघर्ष का क्षेत्र में विस्तार होने से रोकने के लिए अमरीका, ईरान और इसराइल से संयम बरतने का आग्रह किया। ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान में अपना दूतावास बंद कर दिया है और सभी कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। एक सरकारी बयान में ऑस्ट्रेलिया ने इस समस्या को कूटनीति से सुलझाने का आग्रह किया। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान में गंभीर स्थिति को देखते हुए कल एक आपात बैठक बुलाई है। एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमरीकी सैन्य हमलों के बाद एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक आपातकालीन बैठक बुला रहे हैं। इसराइल में तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज में आज 5% से अधिक की वृद्धि हुई और ये अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालांकि इसराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में अमेरिका के शामिल होने के कारण भू राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एक सभ्य समाज में हिंसा और लाल आतंक का कोई स्थान नहीं है। श्री शाह ने अगले वर्ष मार्च तक नक्सलवाद के पूरी तरह से सफाई के अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में सुरक्षा बल जिस तरह से अभियान चला रहे हैं उससे हम अपना लक्ष्य जल्दी ही हासिल कर लेंगे। गृहमंत्री ने आज छत्तीसगढ़ के अपने 2 दिवसीय यात्रा के दौरान नवा रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी परिसर के निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही।
छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय जी का सबसे बड़ा उपलब्धि है तो एक रुका हुआ नक्सल विरोधी अभियान को उन्होंने द्रुत गति से चलाया और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े। और मैंने छत्तीसगढ़ में ही कहा था कि 31/3/2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को पहलगाम आतंकी हमले की घटना में एक बड़ी सफलता मिली है। एजेंसी ने 2 लोगों को हमले में शामिल आतंकियों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एनआईए ने बताया कि सभी आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे और आतंकी गुट लश्करे तैयबा से संबंधित थे। ब्रिटेन के बर्मिंघम से दिल्ली आ रहे विमान में बम होने की धमकी के बाद विमान को रियाद की तरफ मोड़ दिया गया। एयर इंडिया ने बताया कि फ्लाइट AI-114 रियाद में सुरक्षित उतार ली गई। उड़ानों के संचालन की निगरानी करने वाली वेबसाइट ने बताया कि विमान को आपात स्थिति में रियाद की ओर मोड़ना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।